ओम शांति। 12वीं शताब्दी महाराष्ट्र के महान संत संत ज्ञानेश्वर अपने ग्रंथ की शुरुआत में कही उस परम ज्ञान का आह्वान करते हैं। वो कहते हैं मेरी जो वाणी है बहुत छोटी है और ज्ञान जो है बहुत बड़ा। इसलिए उस भाषा का उन्होंने आह्वान किया, उस ज्ञान का उन्होंने आह्वान किया, ये मराठी ची माहुली ब्रह्मविद्ये सा सुकाड़ करी घेने देने तुतची वरी ओ देही या जगा। हे परम ज्ञान तू मराठी इस नगरी में प्रवेश कर ताकि जन का कल्याण हो और ये ज्ञान जैसे मैं सबको दे रहा हूं उसी तरह हर एक आत्मा ये ज्ञान दूसरी आत्मा को दे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम भी आज उस परम ज्ञान का आह्वान कर रहे हैं इस नगरी में, इस सभागृह में, इस ब्राह्मण परिवार के बीच, ताकि वो ज्ञान एक ऐसी सरिता बन जाए जो एक हृदय से दूसरे हृदय में प्रवाहित हो। भगवान का ये ज्ञान राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धम्य सुसुखम कर्तव्ययम। हे अर्जुन, ये ज्ञान राजयोग है। जो ज्ञान मैं तुझे सुना रहा हूं ये सर्वोच्च है, राजगुह्यम अतिशय गोपनीय है, पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। इसलिए इस ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुन। हे अर्जुन, भगवान के वचन क्या करे कि ये ज्ञान जीवन में आ जाए, क्या करे ये परमात्म प्रकाश जीवन का अनुभव बन जाए। तो इस भट्टी की शुरुआत हम एक योग के प्रयोग से करेंगे। सभी स्थिर और अलर्ट होके बैठ जाएंगे। और शुरुआत में मधुबन की यात्रा करेंगे और मधुबन के उन चारों धामों में जाकर दृढ़ संकल्प करेंगे कि अगले दो दिन, आज और कल, ऐसा कुछ जीवन में हो जाए, ऐसा परिवर्तन आ जाए जो आज तक न हुआ था। ऐसी कोई कमजोरी, ऐसी कोई खामी, ऐसी कोई वीकनेस, ऐसा कोई संस्कार, ऐसा कोई विकार जो सब कुछ करने के बाद भी नहीं मिट रहा, वो मिट जाए। ऐसे संबंधों में जो दरारें हैं, किसी जो कड़वाहट है, जटिलता है, कंफ्यूजन है, उलझन है वो उलझन समाप्त हो जाए। हर एक व्यक्तिगत रूप से ये सोचे कि यहां मैं आया हूं स्व परिवर्तन के लिए, और यहां बैठकर जो शब्द कानों पर पड़ रहे हैं केवल उन शब्दों को नहीं सुनना है, वाक्यों के बीच जो अंतराल है उस मौन में स्वयं की चेकिंग करनी है, स्वयं को देखना है। केवल सुनना नहीं परंतु सुनते सुनते किसी मौन में अंदर जो अचानक हलचल होगी, जो अचानक पता चलेगा कि जिसे मैं पकड़ के हूं वो व्यर्थ है, जो अचानक पता चले कि ये नहीं होना चाहिए और फिर भी हो रहा है, जो अपराध भाव समाया हुआ है, जो पाप की भावना समाई हुई है, जो हीन भावना समाई हुई है, या जो विकार की भावना या पश्चाताप का भाव है ब्राह्मण बनने के बाद किए हुआ यदि कोई पाप है, तो समझना यह अवसर है भगवान ने फिर से दिया है ताकि उस भाव से हम मुक्त हो जाए और मन फिर से ऊंची अवस्था में स्थित हो जाए। जो भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म भाव है जो मन में आते हैं उन्हें देखना समझना, जांच पड़ताल करना, और जो व्यर्थ है और जो असार है और जो विकार है उसको समाप्त कर देना, तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं अति सूक्ष्म एक चैतन्य ज्योति हूं। वायुमंडल में अव्यक्त प्रवाह मन मौन शरीर स्थिर चहुओर शांति के प्रकंपन वायुमंडल में संपूर्ण मौन रुकड़ी तख्त पर विराजमान मैं एक तेजस्वी आत्मा हूं। देह के भान से परे मैं शांत स्वरूप स्थिर संपूर्ण मौन, कोई आवाज नहीं, चेतना भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित संसार से परे मैं फरिश्ता नीलांबर में उड़ रहा हूं ऊपर संपूर्ण हल्कापन जा रहा हूं अरावली पर्वतों के ऊपर आबू की उत्तुंग पहाड़िया और नीचे दिखाई दे रहा है संसार का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ मधुबन अब मैं फरिश्ता नीचे उतरता हूं मधुबन के आंगन में तपस्वियों की तपस्या भूमि तीर्थराज ब्रह्मा की कर्म भूमि कर्मातीत भूमि तपस्या कुंड परमात्मा अवतरण भूमि गया शांति स्तंभ के पास अनुभव हो रहा है शक्तियों की तरंगे निकल मुझात्मा में समा रही है बच्चे यदि शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ में आ जाना मैं फरिश्ता उड़कर हिस्ट्री हॉल में सभी पूर्वजों का वरदानी हस्त मेरे सिर पर, बच्चे यदि व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाना, बाबा के कमरे में देख रहा हूं बाबा को। यदि बाप समान बनने का संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाना, और यदि उदास हो जाओ तो कुटिया में आ जाना, बाप से रू रिहान करने। मैं फरिश्ता बाबा की कुटिया में हूं, अपने जीवन की सारी बातें बाबा को सुना रहा हूं। वो जो गलत था, वो जो पाप था, वो जो विकर्म था, वो जो बाप का बनने के बाद किया था, वो जिसकी सजा एक के लिए 100 गुना है, भगवान को बता रहा हूं। और बताते बताते मन हल्का हो रहा है, स्थिर हो रहा है। मैं फरिश्ता मधुबन के आंगन में उड़ रहा हूं अब ऊपर, मधुबन की खुशबू लिए सारे संसार में बिखेर रहा हूं। प्रकृति के 5 तत्व मुझ फरिश्ते के वाइब्रेशन से शुद्ध हो रहे, धीरे धीरे वापस अपने इस पार्थिव देह में प्रवेश, मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें निकल, यहां का संपूर्ण प्रांगण स्वच्छ शुद्ध हो रहा है। और इसी संकल्प से एक भीतरी यात्रा, एक आंतरिक खोज, मैं आत्मा आरंभ करती हूं आज और कल। ये 2 दिन जीवन को पलटाने वाले होंगे, एक नई शुरुआत करने के होंगे। अब तक जो जीवन था और अब के बाद का जो जीवन होगा नूतन होगा, दिव्यता से परिपूर्ण होगा। भगवान के साथ भरा होगा और इसी संकल्प से मैं फरिश्ता अपने नए जीवन की ब्राह्मण जीवन में नए जीवन की आज से शुरुआत करता हूं। ओम शांति। आदि शंकराचार्य के जीवन में एक प्रसंग का वर्णन है। जब वो कभी किसी गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं एक घर है जहां एक तोता है और वो शास्त्रों की बातें बोल रहा है, ज्ञानवर्धक बातें बोल रहा है, श्लोक पढ़ रहा है। शंकराचार्य को आश्चर्य होता है, ये कौन है, ये किसका घर है? पता चलता है मंडन मिश्र का घर है, जो कि बहुत बड़ा ज्ञानी था। और उस ज्ञानी व्यक्तित्व के साथ रहते रहते वो तोता भी ज्ञानी हो गया था। वो केवल रट तो रहा था परंतु उसकी बातें बड़ी रसधार थी। और उसी गांव में एक दूसरा घर देखते हैं जहां एक दूसरा तोता है, जहां पर वो तोता गालियां दे रहा है। वो पूछते हैं ये किसका घर है, तो पता चलता है ये किसी एक दुष्ट व्यक्ति का घर है। एक मूक प्राणी भी जैसा उसको संग प्राप्त होता है उसी संग में रंग जाता है। और हम ब्राह्मण आत्माओं को सबसे बड़ा संग प्राप्त हुआ है, सबसे महान संग प्राप्त हुआ है, श्रेष्ठ संग प्राप्त हुआ है, परम सत्य का संग प्राप्त हुआ है। और ऐसे परम सत्य के संग को प्राप्त कर हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है, हमने जीवन में क्या किया है, कितना स्वयं को रंगा है। होली नजदीक है, इस होली में स्वयं को रंगना है और आज से और अब से रंगना है। और किस में रंगना है? प्रभु प्रेम में रंगना है। इतना आत्मा को भर देना है परमात्म प्रेम से कि संसार के किसी भी व्यक्ति की तरफ फिर प्रेम ना जाए। इतना परमात्म प्रेम से आत्मा को भर देना है कि संसार की कोई आत्मा फिर हमें आकर्षित न कर पाए, क्योंकि वायुमंडल विकारी है। कल जो अव्यक्त वाणी चलने वाली है उसमें बाबा ने एक जबरदस्त बात कही है, आज के युग में विकार और साधन ऐसे है कि 5 साल का बच्चा भी विकारी बना सकता है। ऐसे साधन है, 5 साल का बच्चा भी विकार में जा सकता है, इस तरह के साधन निर्माण हो चुके हैं। जब तक अपवित्रता को खत्म नहीं किया है, पवित्रता का रंग आत्मा को नहीं लग सकता। तो हमें परम सत्य प्राप्त हुआ है, पर क्या हम जानते हैं हमें कौन मिला है? क्या ये भाव, क्या ये भान, क्या ये स्मृति निरंतर रहती है कि जो हमें मिला है वो सबसे बड़ा है, या हम अपने ही जीवन के सुख दुख में डूबे रहते हैं? भगवान मिल गया, अमृत वेला किया, उसकी वाणी सुनी, परंतु शायद जीवन में वो परिवर्तन नहीं आया जो होना चाहिए था, जो आना चाहिए था। तो लक्ष्य रखेंगे इस पट्टी में, इस दो दिन में कुछ ऐसे अंतर के तार छिड़ जाए जो हमें सोचने पर मजबूर करते कि हमें और बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ परिवर्तन करना बाकी है, जो भगवान चाहता है वैसे अब तक हुआ नहीं है। हमारे जीवन कहानी से संसार की सारी कहानियां निकली है, कल की वाणी में बाबा ने कहा। इसलिए हमारी जीवन कहानी बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है। अगर है नहीं तो अब उसको बनाना है। तो आज की इस भट्टी में हम देखेंगे वो कौन से संग हम करें जिससे जीवन श्रेष्ठ बन जाए, ऐसा कौन सा सत्संग करे कि जिससे जीवन महान बन जाए, जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। जगदीश भाई जी ने कभी तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा दी थी। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात केवल एक शब्द में परिवर्तन। सब कुछ कर लिया परंतु परिवर्तन नहीं है। सुबह दो दो बजे उठकर योग चालू है, मुरली पढ़ना लिखना सुनना सुनाना चालू है, सेवाएं चालू है, परंतु चेतना की स्थिति वही है जो पहले थी। आंतरिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, बाहर सेवाएं हो रही है। और जिसे हम सेवा कह रहे हैं शायद वो केवल प्रचार है, सेवा नहीं। प्रचार और सेवा में अंतर है। प्रचार तो संसार के लोग भी कर रहे हैं, और जिसको हम सेवा कर रहे हैं शायद वो सोशल सर्विस है, स्पिरिचुअल सोशल सर्विस नहीं। क्योंकि सेवा से पहले तीन चीजें चाहिए तो ही वो सेवा सफल होगी, और वो सभी जानते भी है। और इन तीन चीजों को छोड़कर जो केवल सेवाओं में उतरता है और सेवाओं में खो जाता है तो शायद वो सेवा सफल नहीं हो पाती। वैराग, त्याग और तपस्या, बिना इन तीन चीजों के वो सेवाएं केवल सोशल सर्विस, सोशल वर्क है, जो कि संसार में भी कई लोग कर रहे हैं। केवल सूचनाओं का आदान प्रदान करना सेवाएं नहीं है। ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये सृष्टि चक्र है, ये संगम युग है, ये ब्रह्मा है, इसमें ये भगवान आया है, नवयुग की स्थापना हो रही है, ये धारणाओं है, ये चार सब्जेक्ट है। इन सूचनाओं को ज्ञान नहीं समझ लेना है। ज्ञान सूक्ष्म है। तीन दिन पहले मुरली थी, ज्ञान बहुत डीप है और यह डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो जब डिफिकल्ट कोई चीज स्वयं भगवान कह रहा है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी इस ज्ञान को समझने के लिए। तो सत्संग, संगत की रंगत, ऐसा हम कौन सा संग करें कि जिससे जीवन ही बदल जाए। जैसे दिखाया है, किसी एक सेठ जी के पास एक तोता था पिंजड़े में बंद, और वो सेठ जी रोज सत्संग करने जा रहे, रोज मंदिर में जा रहे, प्रवचन सुन रहे और आ रहे। वो तोता एक दिन पूछता है, आप रोज जाते हो, मेरे लिए भी कुछ पूछ के आओ। वो कहते हैं क्या? वो कहता है मेरी मुक्ति कैसे होगी। वो सेठ जी जाते हैं, वो जो संत महात्मा वहां बैठे होते हैं उनको पूछते हैं कि हमारे तोते ने एक प्रश्न पूछा है, उसकी मुक्ति कैसे होगी। और वो संत उस सेठ जी की बात सुनते हैं और बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। इस सेठ जी को समझ में नहीं आता है ये क्या हुआ, और चुपचाप वापस आ जाते हैं। और तोता पूछता है क्या हुआ, वशिष्ठ कहता है कि मैंने जब उनको पूछा, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा उत्तर में और बेहोश हो गए। तोता कहता है मैं समझ गया। और दूसरे दिन जब सेठ जी फिर प्रवचन सुनने जा रहे होते, देखते हैं तोता तो मर चुका है, बेहोश पड़ा है। सोचते हैं इसको खोल दूं। जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खोलते हैं, वो तोता उड़कर भाग जाता है। और वो तोता उस सेठ जी से एक बड़ी बहुमूल्य बात कहता है। वो कहता है कि आप रोज जाते हो, रोज उनको प्रत्यक्ष सुनते हो, फिर भी आपके जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। और मुझे उन्होंने जो संदेश दिया वो अप्रत्यक्ष दिया, संकेतात्मक दिया, परंतु मैं उनकी बात समझ गया। उनका उस तरह बेहोश गिर जाना अर्थात यदि मुक्त होना है तो मरना पड़ेगा। मर जीवाचन, मर जाओ तो उड़ जाओगे। तो संग ऐसा हो कि जो वो सुना रहा है उसकी एक एक बात हम धारण कर ले, उसका एक एक अक्षर हृदय में समा जाए और परिवर्तन के लिए बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता नहीं या बहुत सारे क्लासेस की आवश्यकता नहीं, एक अनुभव, एक अशरीरीपन का अनुभव, एक गहरा प्रभु प्रेम का अनुभव, वन ड्रॉप ऑफ गॉड्स लव काफी है। पर क्या हमने अपने हृदय को इतना प्रभु प्रेम से भरा है? तो ऐसे सात प्रकार के संग हैं जो हमें इस जीवन में करने हैं। ऐसे सप्तसंग, सात संग जीवन में कहो या दिनचर्या में, एक दिन में ये सातों के सातों चीजें होनी चाहिए तो कहेंगे सत्संग, तो कहेंगे हम उसके साथ रह रहे हैं जो परम है, जो श्रेष्ठ है, जो महान है। सबसे पहला संग है परमात्म संग, ईश्वरीय संग, स्वयं उसी को साथ रख कर चलना, स्वयं उसी के साथ दिनचर्या बितानी। सारे दिन भर मुझे याद करो, आज की मुरली में भी है, तुम्हें यह सब नहीं करना है कौन क्या करता है, किसमें क्या खामियां है, यह सब नहीं देखना है, इन झरमोई झगमोई में टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक बाप की याद में रहो। क्या करे जो उसका संग निरंतर अनुभव हो, सहज अनुभव हो, सतत अनुभव हो। सुबह का वरदान था परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट। वो लाइट का कोई भरोसा नहीं, परंतु आत्मा की लाइट और परमात्मा की लाइट और आत्मिक स्थिति की लाइट का प्रयोग करो ज्ञान और योग में, तो क्या हो जाएगा? सफलता मिलेगी। तो सभी ने किया, करना है, हालात बदलने हैं। जो साधन अब हमारे पास है, एक समय आएगा कोई भी साधन नहीं रहेगा, चारों ओर हलचल होगी, प्रकृति के पांच तत्वों की हलचल होगी, पांच विकारों की हलचल होगी, पुराने संस्कारों की हलचल होती, भटकती हुई आत्माओं की हलचल होगी, विकारी दृष्टि वाली आत्माओं की हलचल होगी, ब्राह्मण परिवार में हलचल होगी, लौकिक परिवार में हलचल होगी, तीसरा महायुद्ध होगा, ग्रह युद्ध होगा, साधनों का अभाव होगा। ऐसी सब अवस्थाओं में, परिस्थितियों में क्या काम आएगा? आत्मिक लाइट, परमात्मा लाइट और प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट। तो तो हम बात कर रहे थे सत्संग की, संगत, जैसा संग होगा वैसा रंग होगा। व्यक्ति जो कर रहा है, व्यक्ति जो है वर्तमान, उसके जो विचार है, उसकी जो भावनाएं हैं, वो ये दर्शाती है कि वो किस संग में रह रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या सुन रहा है, किसका विचार करता है, भावनाओं में क्या है। यदि परिणाम दुख है तो जरूर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। यदि परिणाम में दर्द है, पीड़ा है, पश्चाताप है, तो जरूर जिसके संग में वो है वो संग ही गलत है। यदि परिणाम में दुख है तो जरूर कोई गहरा मोह अंदर बैठा हुआ है। महाभारत में दिखाया है, धृतराष्ट्र बार बार कहता है कि दुर्योधन मेरा पुत्र है और मेरे उसके प्रति कर्तव्य है, दायित्व है, वो जो कुछ कर रहा है मुझे उसके लिए करना पड़ेगा क्योंकि मैं पिता भी हूं, केवल राजा नहीं। परंतु विदुर कभी धृतराष्ट्र से कहता है कि दुर्योधन आपका दायित्व नहीं है, आपका रोग है। जिसे हम दायित्व कह रहे हैं, जिसे कर्तव्य कह रहे हैं, जिसमें मोह है, शायद वो हमारा रोग है और रोग को उखाड़ कर फेंक देना होता है। तब तक पीड़ा नहीं मिटेगी, तब तक दर्द नहीं जाएगा। जरूर किसी का संग कर रखा है, किसी देहधारी का, कई बार और रोज मुरलियों में आता है, मेरे अतिरिक्त किसी से भी प्यार मत करो, मेरे अतिरिक्त किसी का भी संग मत करो, मेरे अतिरिक्त तुम्हारा इस संसार में और कोई नहीं है। तो सबसे पहला संग करना है, पहले सबसे पहली संगत जो है वो है परमात्मा की संगत। कैसे उस परमात्मा को अपने जीवन में संभाले, कैसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक समय, प्रत्येक घटना में उसका हम प्रयोग करें। अभी अभी एक विदेशी भाई मिला था हमको मधुबन में आने से पहले, वो एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहा था। वो कह रहा था कि मैं बाबा को दिन रात यूज करते रहता हूं और मुझे आश्चर्य होता है ये ब्राह्मणों पर वो बाबा को यूज क्यों नहीं करते। कुछ भी होता है तो मैं तुरंत आह्वान करता हूं बाबा का, बाबा ये हो गया, बाबा वो हो गया, सब कुछ कम्युनिकेट करता हूं, बताते जाता हूं उसको, और मुझे आश्चर्य होता है ये बाकी लोग क्यों नहीं करते ऐसा। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। दो चीजें करनी है दिनचर्या में, बार बार बाबा का आह्वान और बार बार बाबा का शुक्रिया। छोटी सी छोटी बात हो गई तो धन्यवाद उसको, हर चीज में उसको धन्यवाद। ऐसा ये सुंदर संगठन संसार में कहीं नहीं है, जहां इतनी सारी महान आत्माएं एकत्र आ जाए। संसार में संसार के लोग क्या कर रहे, कौन सी चर्चाएं कर रहे, राजनीति की चर्चा कर रहे, युद्ध की चर्चा कर रहे, व्यर्थ की चर्चा कर रहे, विकारों की चर्चा कर रहे, फिल्मों की चर्चा कर रहे, बिजनेस की चर्चा कर रहे, और यहां कौन सी चर्चा हो रही है, यहां परमात्मा चर्चा हो रही है। ऐसे संगठन में हम आ गए, उसके लिए बाबा को धन्यवाद, बार बार धन्यवाद और बार बार आह्वान करना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक बड़ी बहन ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया था, हिसार के रमेश बहन जी, जब वो युवा थे तो एक बार कहीं गीता पाठशाला में गए और रात में देरी हो गई, 11 बज गए और आने के लिए कोई साधन नहीं था। वो सड़क पर खड़े थे और कोई भी साथ नहीं था, एक ट्रक आया, उन्होंने ट्रक को रोका और पूछा कहाँ जा रहा है ये ट्रक। तो उसने कहा कि मैं आपको छोड़ दूंगा, आपको कहाँ जाना है। उन्होंने कहा हिसार, और वो बैठ गए। रात का समय था और ट्रक चलाते चलाते उस ट्रक वाले की बुद्धि, दृष्टि पलट गई और उसने ट्रक किसी और दिशा में मोड़ दिया। जो रास्ता उधर जा रहा था सेंटर की ओर, वह न लेके जाकर शहर की ओर किसी और रास्ते में, और तुरंत जो बहन थे उनको पता चल गया और कोई भी नहीं था और ट्रक स्पीड से जा रहा था, और वो जो ड्राइवर था वो भी अकेला था। जैसे ही बहन को पता चला कि ये तो शहर का रास्ता है ही नहीं और उसके पास अब कोई और साधन भी नहीं था, किसको पुकारती और किसको आवाज देती, सीधा बाबा को आह्वान किया, इतना शक्तिशाली आह्वान किया, बाबा आ जाओ। और शिव शक्ति दुर्गा का रूप जैसे धारण कर लिया कि मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूं। उससे कुछ भी नहीं कहा, बस अपने स्वमान में स्थित हो गई और बाबा की एक रस ऐसी शक्तिशाली याद तुरंत उस ड्राइवर ने ट्रक रोका। उसको ऐसा लगा कि मेरे बाजू में साक्षात दुर्गा है। उसको ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे बाजू में जैसे साक्षात देवी बैठी है, और तुरंत उसने कहा कि मुझे माफ कर दो बहन, मेरी दृष्टि खराब हो गई थी, परंतु जैसे ही मैं आपको दूसरी दिशा में ले जा रहा था अचानक से मुझे कुछ हुआ और लगा कि बाजू में जो बैठी है स्वयं अष्टभुजाधारी दुर्गा है, और वो उनको वापस रात को 12 बजे से भी ज्यादा सेवा केंद्र पर छोड़ देता है। बार बार आह्वान करना, केवल परिस्थिति है तब नहीं, केवल समस्या है तब नहीं, वैसे भी आह्वान करते रहना, कोई खुशी की बात हो तो भी आह्वान करना। एक दूसरे बहन ने, हम अभी साउथ में गए थे, बड़ा ही विचित्र सा अनुभव सुनाया था। उन्होंने कहा कि यह अनुभव मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाया, मुझे पता नहीं ये सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए, शायद लोग विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा अनुभव है। उसने कहा कि मैं विदेश गई थी और विदेश में रिट्रीट चालू थी और वो मौन में थी, और वो शाम का समय था, कहीं बाबा की याद में घूमते घूमते जा रही थी और अचानक सेवा केंद्र की वो बहन, एक दलदल था और दलदल में धस गई, और वो दलदल इतना गहरा था और आसपास कोई भी नहीं था, धीरे धीरे पैरों तक डूबती जा रही है, उसके अंदर धसती जा रही है। तुरंत उसने बाबा का आह्वान किया, ये क्या हो रहा है, और ऐसी याद की बाबा को, ऐसी याद कि यदि बाबा वास्तव में मैंने अपना जीवन तुम्हें दिया है तो तुम ही मेरी रक्षा करो। धीरे धीरे और अंदर कमर तक, और अंदर वो दलदल धसती जा रही है, और ऊपर आजू बाजू देखा कोई भी नहीं है, बस अभी थोड़ा ही क्षण और जैसे बेहोश सी हो गई। याद करते 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 और थोड़ी देर में देखा, जब होश आया वो दलदल से बाहर थी। फिर से उसने देखा, वहां कोई भी नहीं था। उसको समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, वहां से निकली, फिर वहां नल था, साड़ी वगैरह उसने सब कीचड़ लग गया था, उसको साफ किया और आई। उसने कहा यह हुआ था पर मैंने ये कभी किसी को बताया ना, ना कभी लिखा। हमसे पूछा कि आप बताओ ये क्या था, बताना कठिन है क्या था, परंतु बाबा के साथ के उन बच्चों के अनुभव जो अनन्य हैं, बहुत गहरे हैं। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाया है भगवान कैसे मदद कर देता था, क्या वो अब नहीं करेगा? हाँ नाम्याची खीर चाखतो, सो खोबांची गुरे राखतो, वो अब भी करेगा। परंतु यदि मुख पुकारे तो वो नहीं आएगा, आत्मा पुकारेगी तो वो आएगा। Not everyone who cometh and saith, Lord, Lord, but he that doeth the will of my Father shall enter the kingdom of heaven. Jesus कहता है केवल मुख से कहने वाले नहीं, केवल हे पिता कह दे, परंतु जो मेरे पिता की मत पर चलेगा वो। लास्ट संडे की मुरली में भी था, हे बाबा हे भगवान भक्ति में कहते, ज्ञान में हे दादी हे दादा हे दीदी ये तो नहीं कहते हो। रूहानी नशे में रहो, चीटी भी चली जाती है कान में तो हाथी बेहोश हो जाता है, ऐसा तो नहीं लास्ट संडे की मुरली में आया था। इसके लिए सबसे पहला संग बताया परमात्मा संग, और उसमें दो चीजें करनी है। करेंगे सभी माताएं क्या करेंगे? रोज बाबा को आह्वान, आ जाओ, अभी यहां आना है, बस नहीं मिल रही है, गाड़ी नहीं मिल रही है, बाबा का आह्वान करो, आ जाओ। नुमा शाम का योग है और मेहमान आ गए और थर्ड संडे था और हमें अभी सेंटर पर जा रहे थे और मेहमान आ गए, क्या करेंगे? कोसेंगे उनको, कहेंगे अभी क्यों आ गए, उन्हें तो पता ही नहीं ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में। बाबा का आह्वान करो कि अब तो सेवा केंद्र जा रहे थे पर अब मेहमान आ गए, अब इन्हीं की सेवा आपकी याद में करेंगे। आह्वान, बार बार पुकारना, बार बार आह्वान करना, और दूसरा धन्यवाद, अहोभाव, थैंकफुलनेस। बहुत अच्छा, जो कुछ जीवन में अब तक हुआ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर से तो धन्यवाद, ये सबसे पहला संग। दूसरा संग है परमात्मा ज्ञान का संग, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन, ज्ञान की गहराई में जाना, यह सबसे श्रेष्ठ संघ है, ज्ञान का संघ। निरंतर ज्ञान बुद्धि में गूंजता रहे। बाबा के कुछ कुछ महावाक्य इतने शक्तिशाली होते हैं कि उन्हें याद कर लिया जाए। आज सुबह की मुरली, मियां मिट्ठू तुम नहीं हो मैं हूं, मैं तुम्हें मिट्ठू बनाने आया हूं, कितना अच्छा वाक्य है। बहुत सारे वाक्य मुरली में ऐसे ऐसे आते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक जगह आज कहा, तुम दूसरों की खामियों को नहीं समझ पाओगे, या समझ पाएंगे? क्योंकि जो व्यक्ति दिखा रहा है उसका व्यक्तित्व कुछ और है, कर्म और व्यक्तित्व अलग चीजें हैं। केवल कर्मों के आधार से व्यक्तित्व क्या है यह नहीं बताया जा सकता है। हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा योगी है और हम उसे बहुत मानते हैं, और अमृत वेला एक दिन हमने उसको देख लिया वो सो रहा है, और हमने उसे बहुत योगी समझ के रखा था, महान योगी तपस समझ के रखा था, तो क्या होगा? जिस दिन उसको देख लिया ये तो सो रहा है, फिर इंप्रेशन डाउन, ये योगी नहीं है, हो सकता है उसको बुखार है फिर भी बैठा हुआ है। एक्शन और पर्सनैलिटी को सेपरेट कर दो, व्यक्तित्व और कर्म। जरूरी नहीं है जो व्यक्ति दिखा रहा है वही सत्य है, उसका व्यक्तित्व कुछ और होगा। इसके लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा, दूसरों की खामियों को समझना मुश्किल है, तुम अपनी खामियों को देखो, अपनी कमजोरी को देखो। दूसरा वैसा क्यों कर रहा है उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इस ज्ञान को समझना है, इस ज्ञान की डेप्थ में जाना है, गहराई में जाना है। जब तक ज्ञान की गहराई में नहीं जाएंगे तब तक उद्धार नहीं हो सकता आत्मा का। केवल क्लास में गए, मुरली लिखी, पॉइंट्स लिखे या मुरली सुना दी, इससे कुछ नहीं होगा। वो तो कब से कर रहे हैं, कितनी डायरियां भर दी, अब कुछ और करना है। और अर्थात मुरली से कुछ चिंतन बिंदु निकालने हैं और सारे दिन भर सोचना है उसके ऊपर। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि सुबह जब मुरली सुनते हो तो टॉपिक्स लिखो खाली, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स बहुत लिख ली, अब केवल टॉपिक्स लिखो और सारे दिन भर उनका फिर चिंतन करो कि ये टॉपिक है और इस पर मुझे सोचना है, तो बुद्धि में ज्ञान चलेगा। नहीं तो कितना हमने लिखा सब चला गया। लिखने का भी एक महत्व है, लिखने की आवश्यकता है, परंतु वास्तविक लिखना सीधा मन पर। कुछ दिन पहले तो बाबा ने यह भी कहा था, कागज वेस्ट मत करो। 3-4 दिन पहले था ना, मुरली में था, और उसी मुरली में था, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे कागज भी होने चाहिए इनविटेशन के लिए, दो चीजें थी। तो दूसरा संग है ज्ञान का, और ज्ञान में चिंतन मनन, ज्ञान में अध्ययन पढ़ाई करना है, निरंतर अध्ययन और चर्चा। आपस में क्या करनी है, ज्ञान की चर्चा करनी है। जब तक ज्ञान की चर्चा नहीं होगी, बुद्धि में ज्ञान के नए संस्कार निर्माण नहीं होंगे। जैसे विकार के संस्कार बार बार करने से हुए हैं, उसी तरह अब नए संस्कार धारण करने हैं ज्ञान के। उसके लिए भी जो मुरली है एक बार पढ़ने से नहीं होगा, एक बार सुनने से भी नहीं होगा, कुछ कुछ बातें उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है और उस पर सोचना है। और सोचने का समय भोजन बनाते समय, सोचने का समय चलते हुए, ट्रैवल करते हुए, जब खाली समय है तब। निरंतर ज्ञान की बुलबुल टिकलू टिकलू करते रहे। तो यह दूसरा संग है, परमात्मा ज्ञान का संग। तीसरा संग है आत्माओं का संग, उसे भी सत्संग कहा जाएगा। यदि उसमें 3 कैटेगरीज है, हमसे बड़े, हमारे साथी और हमसे छोटे, उन लोगों का संग करो जो ज्ञान को, जिसने हमसे अधिक समझा है। उन आत्माओं का संग करो जो महान आत्मा है यज्ञ की। उन आत्माओं को संग करो जैसे दादिया, यदि संभव है, यदि वो नहीं तो दीदिया, यदि वो नहीं तो कुछ आत्माएं ऐसी है जो ज्ञान की गहराई को जिन्होंने छुआ है कहीं कहीं, और जहां दिखाई देता है कि हां ये ज्ञान का आलोक है, हां ज्ञान का सूर्य यहां प्रकट हुआ है, ऐसी आत्माओं का संग करना, यह भी सत्संग है। हमसे अधिक स्पिरिचुअल कैलिबर की आत्माएं, हमसे पुरानी आत्माएं, लंबा समय से ज्ञान में चलने वाली आत्माएं, जिनकी समझ हमसे बड़ी है, जिनकी बुद्धि, जिनकी प्रौढ़ता, मैच्योरिटी, प्रगल्भता हमसे अधिक है, ऐसी आत्माओं का संग भी सत्संग है। और इसके विरोध में उन आत्माओं के संग से दूर भागना है जो व्यर्थ की बातें करते हैं, जो झरमोई झगमोई करते हैं, जो आते हैं और हमें यहां वहां की बातें बताते हैं, यहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, इस सेवा केंद्र पर ये, मधुबन में ऐसा होता है, वहां वैसा होता है। हमें इन सब चीजों से परे रहना है, यह सब व्यर्थ है। ये भगवान का यज्ञ है वो चला रहा है। बाबा ने साकार में कभी कहा है ठेकेदार मैं हूं तुम नहीं, तुम मत सोचो कि इसका क्या हो रहा है, तुम अपना देखो बस। तो अपने से बड़ी, और दूसरा है साथी। ऐसे ही दोस्त बनाने हैं जिनको ज्ञान और योग में रुचि है। हम ऐसी आत्माओं के साथ यदि चल रहे हैं जिनको ज्ञान और योग से एलर्जी है तो हमारा भी उनके साथ पतन होगा। उठते वो भी है अमृत वेला, सुनते मुरली या सुनाते वो भी है, परंतु ज्ञान की चर्चा उन्हें पसंद नहीं है। थोड़ा बहुत कर लो, अमृत वेला कर लो, मुरली सुन लो, थोड़ी बहुत सेवा कर लो, बस इसी में खुश है। ज्ञान की ज्यादा बातें उनको पसंद नहीं आती है, दूर भागते हैं या मूर्ख समझते हैं जो ज्ञान में अधिक उन्नति करते हैं उनको। तो ऐसी आत्माओं का संग करना है जिनको ज्ञान में इंटरेस्ट है, ऐसी आत्माओं का संग करना है जिसको नवीनता में इंटरेस्ट है, मुरली पढ़ने की नवीनता, मुरली सुनने की नवीनता, कुछ ना कुछ क्रिएटिव जो करते रहते हैं, ऐसी आत्माओं का संग। और तीसरा है छोटे, ऐसे लोगों का संग करना है ताकि जिनमें हम ज्ञान के संस्कार भर सके और जो रिसेप्टिव है, संवेदनशील है हमारी बातों के लिए, ऐसे की विशेष पालना करनी है। जैसे किसी सेवा केंद्र पर कोई कन्या आ जाए, पता नहीं किस जन्म के कौन से पुण्य कर वो आई है, किसी घर में छोटा सा बच्चा जन्म ले ले, पता नहीं कौन सी महान आत्मा आ गई है, कोई महान तपस्वी प्रकट हुआ है, हम नहीं बता सकते कितने जन्म जन्म की उसकी भक्ति होगी। जो संस्कार हम 10 साल 20 साल में जीत नहीं पाए, और वो व्यक्ति जो आया है अभी अभी, उसमें वो तो है ही नहीं, वो विकार पहले ही उसका स्वभाव ही इतना मीठा है और हम में ऐसी कड़वाहट अब भी भरी है, तो उससे भी सीखना है। तो ये तीन, हमसे बड़े, साथी और छोटे, ये भी एक सत्संग है, इसको सत्संग बना देना है। और जो कुसंग है, और सत्संग अर्थात केवल किसी के साथ घूमना ही नहीं, किसी के साथ बैठना ही नहीं, मन से किसका संग कर रहे, एकांत में बैठे हुए खाली टाइम है और किसकी याद आ रही है, किसका चिंतन चल रहा है, वो भी संग है। तो तीसरा सत्संग है आत्माओं का संग। चौथा संग है किताबें, बुक्स। यज्ञ में ज्ञानामृत, प्यूरिटी, वर्ल्ड रिन्यूअल और ढेर सारी अलग अलग भाषाओं में मैगजीन्स है, यज्ञ का लिटरेचर है, यज्ञ की किताबें हैं। साकार मुरलिया है, अव्यक्त मुरलिया है, इतना सारा मटेरियल हमारे पास है, हम क्या कर रहे हैं? कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि मुझे बोर हो रहा है, मेरे पास टाइम है, क्या करूं, कहीं घूमने जाते, ये करूं वो करूं, जबकि इतना सारा पढ़ के हो गया, इतना सारा लिटरेचर पढ़ना बाकी है। जो स्टूडेंट लेट एडमिशन लेते हैं उनको ज्यादा टेंशन रहता है कि हमने लेट एडमिशन लिए और इतना सिलेबस पुराना है, आग लग जाए कि मुझे ये सब समझना है, इतना सारा ज्ञान का भंडार भगवान दे चुका है, ऐसी ऐसी बातें कही है 60s 70s 80s और 90s की मुरली में, जो किसी साइकोलॉजी की किताब में इतनी गहरी बातें नहीं है, जो हमारे जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अव्यक्तवाणी है। दिनचर्या को ऐसा सेट करना है कि जिसमें पढ़ाई के लिए समय हो। आप सब ने देखा होगा हमारे यज्ञ का टाइम टेबल, उसमें दोपहर का जो टाइम है उसमें एक शब्द लिखा है स्वाध्याय, देखा है सबने स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात क्या? सेल्फ स्टडी। एक होता है क्लास स्टडी, एक होता है सेल्फ स्टडी, एक होता है क्लास वर्क, एक होता है होमवर्क। स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय अर्थात पढ़ाई। और आपने देखा होगा स्पार्क में बहुत सारी किताबें हैं छोटी छोटी, पूरी अव्यक्तवाणियां पढ़ना मुश्किल है थोड़ा, पर स्पार्क की छोटी छोटी कंपाइलेशन किताबें संकलन वो वहां से ले लो, ऑनलाइन अवेलेबल है, प्रिंट निकालो या उसी में पढ़ो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। ये पढ़ना भी संग है, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो संसार की खबरें, संसार का न्यूज़ वो इतना विस्तार है उसका, बहुत ज्यादा, उसमें बुद्धि भटक जाएगी। इसने ये कहा, उसने क्या कहा, पॉलिटिक्स की न्यूज़, स्पोर्ट्स की न्यूज़, फिल्मों की न्यूज़, सब बुद्धि उसमें चली जाएगी। वो टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये वर्ल्ड टाइम्स है, मुरली सृष्टि का इतिहास है, इस पर आदि मध्य अंत का सृष्टि का भूगोल है, आदि मध्य अंत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर तो यही है। शब्द शब्द वाक्य वाक्य क्या है उसमें, उससे प्यार हो जाए, जैसे गोपियों को प्यार था गोपी वल्लभ से और उसकी मुरली से, वैसा प्यार। तो ये चौथा, पांचवा संघ है ऑडियो विजुअल संघ, ये थोड़ा मॉडर्न संघ है, मॉडर्न सत्संग। इसमें लक्ष्य रखना है कि हम क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। हर दिन ज्ञान की कोई ना कोई एक क्लास जरूर सुननी है, और केवल सुनना नहीं है, उसके नोट्स निकालने हैं, और नोट्स केवल निकालने नहीं है, उन नोट्स को 24 घंटे के अंदर रिवाइज करने हैं, क्योंकि मेमोरी का सिस्टम ऐसा है यदि हम कोई चीज रिवाइज नहीं करते तो भूल जाता है, और फर्स्ट रिवीजन 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए। आज जो नोट्स निकाले रात को दोपहर को उसको एक बार रिवाइज करना, सारी दादियों के ढेर सारे क्लासेस है, वरिष्ठ भाइयों के क्लासेस है, वरिष्ठ बहनों के क्लासेस है, सब कुछ अवेलेबल है। हम उन तक पहुंच नहीं सकते, जैसे हमने कहा दादियों का संग, दादियों का संग सबको मिल जाए ये संभव नहीं है, और दादियां सारी है भी नहीं, परंतु उनके कहे हुए शब्द जरूर है और वो रिकॉर्डेड है। वैसे तो विज्ञान कहता है एक दूसरी बात, आकाशिक रिकॉर्ड्स जिसको कहते हैं, विज्ञान कहता है इस हवा में वो सारे रिकॉर्ड है आज भी। महात्मा गांधी ने क्या कहा था वो इस वायुमंडल में है, किसने क्या क्या कहा वो कहीं जाता नहीं है, डिस्ट्रॉय होता नहीं है, वो वहीं रहता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स जिसको कहते हैं। तो हमारे पास ऑडियो विजुअल है, संसार की बातें सुन रहे हैं, संसार के वीडियो देख रहे हैं या ज्ञान के वीडियो देख रहे हैं। उधर जाओगे तो विनाश होगा, इधर जाओगे तो उन्नति होगी, उद्धार होगा। और यह सबसे वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण संघ है। अमेरिका की एक स्टडी है जिसने कहा कि पिछले 3 से 5 साल में संसार में जितना काम विकार बढ़ा हुआ है उतना कभी नहीं बढ़ा था, और उसका एक कारण है फ्री इंटरनेट। लॉन्ग वॉक पर निकल जाओ कुछ तो सुनते हुए, प्रकृति के सानिध्य में जाओ कुछ सुनते हुए, बाबा के गीत, क्लासेस, कोई वीडियो, कोई एनिमेशन, कोई विजुअलाइजेशन, कोई योग का प्रयोग, ये एक श्रेष्ठ संघ है। उसके बाद अगला संघ है स्थान का संघ, छठवां स्थान, मधुबन, सूक्ष्म वतन, परम धाम, स्वर्ग। मधुबन में रोज तो नहीं जा सकते, परंतु अभी अभी हमने जो ड्रिल की थी, सभी मधुबन जाके आए थे उसमें, सभी माताएं जाके आए, 24 घंटे में एक बार या दो बार मधुबन की यात्रा करनी है, फरिश्ता स्वरूप धारण करना, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, कुटिया, और कुटिया में बैठकर मानसिक पत्र लिखना है। हाथों का नहीं, मानसिक, मानस पत्र, बाबा को दिल का हाल सुनाना। बाबा ने कहा है उदास हो जाओ तो कुटिया में आ जाओ, बाप समान बनना है तो कमरे में आ जाओ, व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हिस्ट्री हॉल में आ जाओ, शक्तिशाली बनना है शांति स्तंभ पर आ जाओ, शांति स्तंभ की परिक्रमा लगानी है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, इन्वर्टेड कॉमा, अब तुम शांति स्तंभ की परिक्रमा लगा रहे हो, जब तुम शांति स्तंभ स्वयं बन जाओगे बाप तुम्हारी परिक्रमा लगाएगा। तो मधुबन की यात्रा करनी है, डायमंड हॉल की यात्रा करनी है, मधुबन में हमने जो सेवा की थी उन दिनों को याद करना है, मधुबन में जो भट्टी की थी उस भट्टी की दिनचर्या को याद करना है, मधुबन में सेवाओं में जब रुके थे वहां के अनुभव थे उन अनुभवों को याद करना है, मधुबन में जो अमृत वेला किया था उस अमृत वेले को याद करना है, मधुबन में जो श्रेष्ठ स्थिति थी निर्विकार उस स्थिति को याद करना है। ये भी संघ है, तो ये है स्थान का संघ, या तो सेवा केंद्र भी एक श्रेष्ठ स्थान है, मिनी मधुबन है। जब व्यर्थ संकल्प आने लगे या और कोई संकल्प आने लगे, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होती है चेंज द प्लेस, स्थान को बदल दो, या तो मधुबन या सेवा केंद्र, या दोनों जब संभव नहीं प्रकृति, प्रकृति का सानिध्य, ये भी एक संघ है। तो ये छठवां संघ, और सातवां एक और एक संघ है, और वो है द सकाश ग्रुप। संसार की आत्माएं दुखी है, हमें उनके पास जाना है और उन्हें सुख की किरणें देनी है, संसार की आत्माएं तड़प रही है, उनके पास जाना है और उन्हें शांत करना है, संसार की आत्माएं अतृप्त है उन्हें तृप्त करना है, अपवित्र है पवित्रता की किरणें देनी है, पता है उनको कि अपवित्रता है और इससे दुख है, फिर भी विकारों का आकर्षण बहुत है, ऐसी आत्माओं को अतिरिक्त बल की आवश्यकता है, और उसमें है पांच तत्व प्रकृति के। 24 घंटे में दो बार प्रकृति को सकाश देनी है। कैसे सकाश देंगे? एक एक तत्व को इमर्ज कर आकाश में जाकर, आकाश को सकाश, उन बादलों को सकाश, उड़ते पंछी को सकाश, सूरज चांद सितारे नक्षत्र को सकाश, पहली धरती ये अवनी माँ, इस माँ को सकाश, वायुमंडल को सकाश, किसी ने पूछा है क्या हम सकाश देते तो पहुंचती है क्या? पुलिस लोग होते हैं उनके पास एक कुत्ता होता है, उसको कहते हैं स्निफर डॉग, अगर कहीं चोरी हो जाए तो कुत्ता क्या करता है? सूंघते सूंघते जाता है और चोर को पकड़ के लाता है। एक साधारण शोर कनिष्ठ निकृष्ट कार्य कर रहा है, परंतु वो भी अपने वाइब्रेशंस छोड़कर जाता है, और वो कुत्ता ढूंढते ढूंढते उस वाइब्रेशंस को, उस चोर को पकड़ लेता है। जब एक चोर एक निकृष्ट कार्य करते हुए अपने वाइब्रेशंस छोड़ जाता है, तो हम संसार की सर्व महान आत्माएं, और यदि हम संकल्प करें कि मुझसे पवित्रता की किरणें पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि में फैल रही है, तो क्या वो नहीं जाएगी? जाएगी। और एक संकल्प आप सबको दे रहे हैं जिसको नोट करके रखना है अपनी डायरी में, मुझे इस संसार के, इस सृष्टि के एक एक कण को पावन बनाना है। बहुत पावरफुल संकल्प है। मुझे क्या करना है? इस सृष्टि के एक एक कण को पावन बनाना है। मुझ आत्मा से ऐसी पवित्रता की किरणें जा रही है कि सृष्टि का कण कण पावन हो रहा है। दूसरा संकल्प, मुझे इस सृष्टि के एक एक आत्मा को पावन बनाना है। मुझसे प्यूरिटी की ऐसी किरणें जाए कि कोई आत्मा स्वयं को रोक नहीं पाएगी, कितनी भी विकारी हो, कितनी भी पतित हो, कितनी भी पापात्मा हो, परंतु उसके हृदय में भी पवित्रता की आकर्षण, पवित्रता का वो खिंचाव उत्पन्न हो जाए, ऐसी शक्तिशाली स्थिति। तो ये है ये भी एक सत्संग ही है जिसमें हम परमात्मा से शक्तियां ले रहे हैं और आत्माओं को दे रहे हैं। उसमें और एक काम करना है, बाबा के जितने सेवा केंद्र है फरिश्ता स्वरूप में एक एक सेवा केंद्र के ऊपर जाना। दो संकल्प, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं और मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ताकि भगवान के जितने सेवा केंद्र है एक एक सेवा केंद्र निर्विघ्न हो जाए और वहां आने वाले जितने भाई बहने सब कुछ जितने लोग हैं वो सब निर्विघ्न हो जाए, सब पवित्र हो जाए, सूक्ष्म अपवित्रता भी नष्ट हो जाए। तो ये है इस यज्ञ को भी सकाश, संसार की आत्माओं को भी सकाश, ब्राह्मणों को भी सकाश, तो प्रकृति के पांच तत्वों को भी सकाश। ये भी सत्संग ही है। तो ऐसे ये सात प्रकार के सत्संग है। सबसे पहला बताया कौन सा, परमात्मा का संग, उसमें दो चीजें करनी है, कौन सी, आह्वान और धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्राना, बहुत अच्छा जो हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है उससे अच्छा, और जो होगा द बेस्ट, जो आज तक हुआ नहीं वो होने वाला है, शुक्रिया। दूसरा संघ ज्ञान का संघ, उसके लिए केवल मुरली पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना नहीं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है। क्या करना है, कई बार मुरलियों में आता है एकांत में जाओ और विचार सागर मंथन करो, कई बार मुरलियों में आता है जैसे वो पादरी लोग क्या करते हैं, माला फेरते हैं एकांत में, तुम भी बाप को याद करो। कुछ दिन पहले था, छत पर जाओ और एकांत में ज्ञान चिंतन करो। दो चीजें चाहिए अध्यात्म में उन्नति के लिए, मौन और एकांत, बिना उसके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तीसरा संघ आत्माओं का संघ, ऐसी आत्माओं को ढूंढो जिनको ज्ञान योग में रुचि है। चौथा संघ किताबों का संघ, किताब पढ़ने की आदत डालनी है। कई लोग ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते किताब पढ़ना छूट चुका है, पहले पढ़ते थे जब आए थे, छोटी छोटी किताबें है, शिवरात्रि छोटी किताब है पर कितनी पावरफुल है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा बाबा के जीवन की कहानी, मम्मा की कहानी, और कितने सारे अनुभव की किताबें हैं, दादी के क्लासेस की किताबें हैं, पढ़ते रहना है, क्योंकि वो नहीं करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, बुद्धि जाएगी कहीं और। अगला संग ऑडियो और विजुअल, सुनते रहना है, लक्ष्य रखना है एक दिन में एक क्लास जरूर सुननी है कोई भी, और उसी क्लास को सुनते हुए भी पॉइंट्स नोट करने हैं, पॉज पॉइंट्स, क्लास पूरी होगी, क्लास सुनना केवल भक्ति मार्ग का सत्संग ना रह जाए, कनरस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इससे कुछ नहीं होगा, नोट करो उसको भूल जाओ, अब इस पर फोकस करो, इसके बारे में सोचो क्या कहा, और उसका और विस्तार करो। जैसे अभी आपने सुना सत्संग, हमने केवल सात बनाए, आप उसको 14 बना दो, ये होगा आगे का चिंतन। द्रोणाचार्य से जयद्रथ पूछता है कि अर्जुन और मैं आपके ही दोनों छात्र हैं, फिर भी ऐसा क्यों है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है और मैं नहीं, और या बाकी कोई नहीं। द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैंने तुम दोनों को समान शिक्षा दी थी, परंतु फिर भी अर्जुन सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वो वहां नहीं रुका जहां मैंने उसे छोड़ दिया, उसने उस पर काम किया, उसने धनुर्विद्या को अपना दुर्ग बना लिया, वहां से उसने और आगे प्रगति की, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। और तुम लोग जितना गुरु ने सिखाया बस उतना सीख लिया, उतना पढ़ लिया और रुक गए, उसी में संतुष्ट हो गए। ज्ञान के लिए निरंतर अतृप्ति चाहिए, असंतुष्टता, द डिवाइन डिस्कंटेंट, दैवीय असंतोष। और आगे और आगे और क्या है, ज्ञान पिपासा, ज्ञान चिड़िया बनकर ज्ञान को हप करो, बाबा ने कहा है। तो ये एक संग। उसके बाद में बताया स्थान, यदि स्थूल में जा सको तो जाओ, नहीं तो मन से जाओ। और जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान का ही स्थान हो, कोई मंदिर भी हो सकता है वो। यदि मन बहुत डाउन है और डिप्रेस्ड है तो मंदिर के पवित्र वातावरण में भी ज्ञान चिंतन किया जा सकता है, प्रकृति में ज्ञान चिंतन किया जा सकता है, किसी धार्मिक सत्संग संस्था में जाकर बैठो तो भी ज्ञान चिंतन हो सकता है। अंदर जाने की जरूरत नहीं, केवल उस प्रांगण में जाते ही मन उठ जाएगा ऊपर। कुछ इमरजेंसी मेथड्स भी है ये सारी। और मधुबन जा सको सहज तो मधुबन चले जाना, अगर कुछ ना कर हो तो मन से जहां जाना है वहां पहुंचना। और सातवां संग बताया सकाश। हम यदि मैं उदास हूं तो उन लोगों को सकाश दो जो पहले से उदास है, तो उनको सकाश देते देते मेरी उदासी दूर हो जाएगी। यदि मैं दुखी हूं तो सकाश किसको देनी है, जो बहुत दुखी है उनको सकाश दो। मनोरिंद्रा दादी के पास यदि कोई बहन आती थी और कहती थी दादी मुझे थोड़ा अकेला अकेला लग रहा है, डाउन लग रहा है, दादी कहती थी जाओ कोर्स कराओ, ज्ञान सुनाने लगो तो मूड आपे ही ठीक हो जाएगा। हैप्पी मूड, होली मूड, लाइट मूड, कल जो वाणी चलेगी उसमें ये तीन शब्द आए हैं। होली के लिए तुम्हारा मूड कैसा हो, होली पवित्र मूड, हैप्पी मूड और लाइट मूड, निश्चिंत हल्कापन, स्वराज्य अधिकारी, ऐसा मूड होना चाहिए। मूड ऑफ नहीं हो जाए, ये ऐसा हुआ वो वैसा हुआ, ये करता है वो करता है, तो ऐसे ये सात संघ है। इस संघ के रंग में रंगना है, इस संगत की रंगत में जीवन बदल देना है। और ये सातों ही चीजें हर दिन करनी है, एक दिन करके छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। जैसे वो चीजें करते करते प्रैक्टिस हो गई, वैसे इन चीजों की भी बार बार करते 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 क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। जैसे वो कोलू का बैल होता है, देखा है कोलू का बैल, क्या कहते हैं उसको, घानी, वो गोल गोल घूमता है ना, ऐसा कोई बैल 10 साल तक घूमता रहा और बाद में उसके मालिक ने उसे छोड़ दिया, आज भी गांव में घूमते रहता है गोल गोल, अभी कोई चैन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, फिर भी घूमता है, क्यों, आदत, अभी भी घूमता रहता है, जहां जाओ वहां गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, उसे कोई कह नहीं रहा है घूमो। मन का यह स्वभाव है, जो आदत बन जाती है वो हो जाती है अपने आप परमानेंट। इसी तरह ज्ञान की नई हैबिट्स क्रिएट करना है, हैबिट्स ऑफ ज्ञान। तो आप सबको एक होमवर्क दे रहे हैं, अपनी डायरी में नोट करके रखना है, ये आप परसों लिखना, ये पट्टी पूरी होने के बाद यदि आज टाइम मिले तो आज लिखना, ज्ञान की 21 नई आदतें, ज्ञान की 21 न्यू हैबिट्स ऑफ ज्ञान, कौन कौन सी हो सकती है, कौन कौन सी मुझे डेवलप करनी है। एक उदाहरण दे रहे हैं चिंतन, ये एक ऐसी कौन कौन सी ज्ञान की नई हैबिट्स है। दूसरा हो सकता है चर्चा करना, इस तरह से लिखना है, यह होमवर्क आप सबके लिए। तो अभी हम एक ब्रेक लेते हैं।